नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं विनीता।
श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 1 से 15 अक्टूबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस अंक की आवरण कथा बनी है स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष। स्वच्छ भारत मिशन एक दशक में जन आंदोलन बन चुका है और विकसित भारत के लिए अमृतकाल की यात्रा का साक्षी बन रहा है। लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय निर्माण के साथ देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प सबके सामने रखा था। उस दिन ये शुरुआत थी देश में एक नए जन संकल्प की, जो जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। और ये सफर यहीं थमा नहीं, बल्कि अभियान गरीबों के लिए गरिमामय जीवन का प्रतीक बन गया। इससे आगे अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के नए सफर पर चल पड़ा है। अपनी आवरण कथा पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं। आज बात करते हैं पत्रिका के संक में शामिल अन्य समाचारों की। समसामयिकी के रूप में इस बार गांधी जयंती पर पीएम मोदी का ब्लॉग, व्यक्तित्व की कड़ी में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर नमन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान, पीएम मोदी का सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा, 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का लहराता परचम, सेमीकंडक्टर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इकोनॉमिक टाइम्स और जल संचय कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन इस अंक में शामिल है। साथ ही इनसाइट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और बैक कवर में मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर सामग्री इस अंक की विशेषता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कि कैसे स्वच्छता का मिशन क्रांतिकारी परिवर्तन का साक्षी बना है।
स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके एक किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों।
सेवा, त्याग व परिश्रम की प्रतिमूर्ति नानाजी देशमुख ने ग्रामोत्थान का एक आदर्श मॉडल बनाया, जिसके नींव पर ग्रामीण भारत स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुआ। उनका सारा जीवन ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के मंत्र को चरितार्थ करने व गरीब पिछड़ों के उत्थान के प्रति समर्पित रहा। भारत रत्न नानाजी देशमुख ने भारत की वास्तविक शक्ति, ग्रामीण शक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने जीवन का कण कण खपा दिया। चाहे ग्रामीण स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नानाजी ने निस्वार्थ सेवा की। ऐसे राष्ट्र ऋषि को उनकी जयंती 11 अक्टूबर पर कृतज्ञ राष्ट्र ने शत शत नमन के रूप में पत्रिका के इनसाइट का स्थान दिया गया है। वहीं समाचार सार में पोलबेयर का नाम श्री विजय पूरम करने का लिया गया निर्णय। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने लॉन्च किया शी बॉक्स पोर्टल। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। EPS पेंशन भोगियों को भारत में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से मिलेगी पेंशन। डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 24 हुई। और राजघाट स्थित गांधी दर्शन में लगाया गया महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच जैसी जानकारियों को शामिल किया गया है।
व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में GMC बाल योगी को शामिल किया गया है, जिन्होंने संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1998 में जब 12वीं लोकसभा का गठन हुआ, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य गंती मोहन चंद्र बाल योगी को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। 1999 में हुए आम चुनाव के बाद एक बार फिर वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और बाल योगी फिर से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल इस उच्च पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने में बल्कि देश में संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तेलुगु देशम पार्टी के नेता GMC बाल योगी का जन्म आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के एक किसान परिवार में हुआ था 1 अक्टूबर 1951 को। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजनीतिक दल के नेताओं से परामर्श कर अपने निर्णयों के प्रति और राजनीतिक विभेदों से ऊपर उठकर स्पष्ट समर्थन प्राप्त किया, दूरदर्शिता और परिपक्वता का परिचय दिया। सभा के कार्य संचालन की व्यवस्था करने के लिए बाल योगी की शैली अनूठी और अत्यंत सराहनीय थी। उनकी कार्यशैली सामान्य बुद्धि और निष्पक्षता पर आधारित थी। वो सभा के भीतर और बाहर सभी दलों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। जब वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, तब 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनकी प्रेरणादायी जीवन यात्रा को आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं।
विकसित भारत 2047 ये केवल भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे दीर्घकालिक सोच के साथ कठोर परिश्रम चल रहा है। इसी परिश्रम में एक ऐसा काम है जिसके बारे में बात करने से अमूमन लोग शर्म या हिचकिचाहट महसूस करते थे, लेकिन दशकों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में ही स्वच्छता, शौचालय जैसे शब्दों के जरिए जो राष्ट्रीय आह्वान किया, वो आज जन आंदोलन बन चुका है। देश में लगभग 12 करोड़ शौचालय के निर्माण से शुरू हुई कहानी आज व्यवहारगत बदलाव के साथ जन जन की जीवन शैली का अंग बन चुका है। साफ सफाई से आगे बढ़ स्वच्छ भारत मिशन अब कचरे से कंचन का नया अध्याय लिखते हुए एक दशक की यात्रा में ही आत्मनिर्भर भारत का आधार बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर न्यू इंडिया समाचार के वरिष्ठ सलाहकार संपादक संतोष कुमार और सहायक वरिष्ठ सलाहकार संपादक पवन कुमार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को झाड़ू पकड़ने में शर्म आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शर्म नहीं, सम्मान की बात हो गई है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के जिस पवित्र अभियान की शुरुआत की थी, अब वो जनमानस में रच बस गया है। लोगों ने इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल किया है। इस पूरे साक्षात्कार को पत्रिका में पढ़ सकते हैं।
भारत मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी कड़ी में PM मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन्स को एक साथ हरी झंडी दिखाई, जो 3 राज्यों में आधुनिक कनेक्टिविटी देगी। दुनिया में भारत की प्रगति और आधुनिकता की पहचान को सशक्त कर रही स्वदेशी तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। ट्रेन की लोकप्रियता और मांग इस तरह बढ़ी कि देश भर में वंदे भारत ट्रेन्स की संख्या इन नई 3 ट्रेन्स के साथ मिलकर 54 जोड़ी तक पहुंच गई। जिन 3 नई वंदे भारत ट्रेन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ हरी झंडी दिखाई, वो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में क्रमशः मेरठ को राजधानी लखनऊ से, बेंगलुरु से मदुरई और चेन्नई को, नागर कोविल से जोड़ देंगी। अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। जो 3 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरै अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहार या वीकेंड पर मदुरै और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन से सुविधा होगी। चेन्नई से नागर कोविल रूट के वंदे भारत से भी छात्र, किसान और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों पर वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। कारोबारी और दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे में हर स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल रेलवे को बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। भारतीय रेल को हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे भारत मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये अब देश की सरकार का मंत्र है और इसी वजह से आज भारत की प्रगति वैश्विक सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गरीबों के प्रति केंद्र सरकार के अप्रोच में बदलाव आया है। सरकार की नीतियों का ही असर है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, अब वो अपने अकाउंट से डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, उन्हें आज बगैर गारंटी के बैंक से लोन मिल रहे हैं।
जो दिन की दिहाड़ी के लिए भटकते थे, अब वे एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। जीवन में क्या हो रहा है, इससे अनजान रहते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी ने इन लोगों को दुनिया के साथ खड़ा किया है। गरीबी से संघर्ष करके बाहर निकले ऐसे लोगों में तरक्की की भूख भी ज्यादा है। उनकी आकांक्षाओं की वजह से नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उनकी क्रिएटिविटी से इनोवेशन की नई राह तैयार हो रही है। उनकी जरूरतों से बाजार की दिशा तय हो रही है और उनकी आय में हो रही बढ़ोतरी से बाजार में मांग बढ़ रही है। भारत का यही नया मिडिल क्लास देश की प्रगति की बड़ी शक्ति साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई चौड़ाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के नागरिकों की सुविधा का माध्यम है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हर देशवासी की आकांक्षा है। दुनिया की भी भारत से यही उम्मीद है। इसके लिए देश में एक क्रांति की तरह काम किया जा रहा है। इसके लिए औद्योगिक पार्क, बल्क ड्रग्स पार्क, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार भारत को स्किल, नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बनाने के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया का पार्टनर बना रही है। प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख बिंदु पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा इंतजार। अब दीजिए आज्ञा। मैं हूँ मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
धन्यवाद।